नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, एआई से देश की सुरक्षा और प्रगति को नया आयाम मिलेगा। राजस्थान रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस में एआईएमएल पॉलिसी और नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ। विकसित भारत जी राम जी तथा चार नई श्रम संहिताओं पर पीआईबी की ओर से जयपुर में क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्ता का आयोजन। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने तथा पारे में और गिरावट की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एआई देश की प्रगति और सुरक्षा को नया आयाम दे रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एआई से रोजगार कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। आज जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और डिजिफेस्ट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अटल लाइब्रेरी और अटल स्टूडियो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आ चुका है और युवाओं के लिए 1,56,000 सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में एआईएमएल पॉलिसी लाई गई है, इससे एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआईएमएल पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निष्ठा के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि एआई को अपने जीवन में शामिल करके हम काफी फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिक एआई का उचित इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सरकार ने एआई मिशन बनाया है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लघु उद्योग भारती, सीआईआई और आईसीईए का सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने जयपुर में जल्द ही डेटा सेंटर का शिलान्यास करने की भी घोषणा की।
इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का, अब उसका काम बहुत आगे अच्छा बढ़ गया है। 5,000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग का, एक बड़ा डेटा सेंटर राजस्थान में बनना चाहिए, जयपुर में विशेषकर बनना चाहिए। तो अब उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। इस डेटा सेंटर का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी करेंगे।
कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एआई को मानव जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एआई इंडिया मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 और नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम सहित कई डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए गए। राज्य सरकार ने तकनीकी विकास के लिए गूगल और आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। जयपुर में विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आज विधानसभा की सदाचार कमेटी की बैठक आयोजित हुई। कमेटी के सामने संबंधित तीनों विधायकों ने पेश होकर अपना पक्ष रखा। चेयरमैन कैलाश वर्मा ने बताया कि विधायकों ने साक्ष्य के तौर पर पेन ड्राइव और फोटोग्राफ्स सौंपे हैं।
विधायकों ने अपनी बात रखी है, पत्रकार महोदय ने अपनी बात रखी है और दोनों को सुनने के बाद में कमेटी इसका पूरा अध्ययन करके अच्छे तरीके से विधिक राय भी लेगी और विधिक राय लेने के बाद में स्पष्ट निर्णय तक पहुंचेगी। जो भी निर्णय आएगा उसको हम आगे स्पीकर साहब तक पहुंचाएंगे।
जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 और 9 जनवरी को राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन रायपुर में हुए 60वें राष्ट्रीय डीजीआईजी सम्मेलन की सिफारिशों की अनुपालना में किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षक, रेंज आईजी और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। जोधपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 19वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विशेष महानिदेशक बितुल कुमार ने परेड की सलामी ली और जवानों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षित जवानों ने समारोह में अनुशासन और तालमेल के साथ आकर्षक परेड प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया। समारोह के अंत में नए जवानों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 9 जनवरी को दिल्ली में आयोजित समारोह में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस राष्ट्रीय समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे को उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 शील्ड प्रदान की जाएंगी। इनमें संपूर्ण कार्यकुशलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत शील्ड, वैगन मेंटेनेंस शील्ड और आबू रोड रनिंग रूम शील्ड शामिल है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे के 6 रेल कर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आज जयपुर में विकसित भारत जी राम जी तथा 4 नई श्रम संहिताओं पर क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्ता का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राज्य की ग्रामीण विकास सचिव पुष्पा सत्यानी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी में पुरानी मनरेगा योजना को और बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले की योजना में कुछ और सुविधाओं को जोड़ा गया है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से नई योजना में तकनीक का समावेश किया गया है, साथ ही अब स्थायी निर्माण पर जोर रहेगा।
हमारी जो स्कीम्स है उसका एक सिंक्रोनाइज तरीका हो जाए, वो जो हमारे नीचे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्कीम्स के साथ लगकर हम अगर इस वीबीजी राम जी को यूज करेंगे लेबर को, तो मेरे ख्याल से विल बी बेनिफिटिंग होगा।
सम्मेलन में उप मुख्य श्रम आयुक्त निरंजन कुमार ने 4 नई श्रम संहिताओं के बारे में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। इस सम्मेलन में विभिन्न मीडिया समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आज जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत अब साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और भुगतान सीधा लाभार्थी के खाते में जाएगा। उन्होंने विपक्ष द्वारा नाम को लेकर किए जा रहे विरोध पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सैकड़ों योजनाओं के नाम बदले थे, जबकि वर्तमान सरकार ने योजनाओं को सेवा और सनातन से जोड़ने का काम किया है। श्री राठौड़ ने कहा कि नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति और जियो टैगिंग जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कानून गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और गरीबी दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।
स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध कम समन्वय, मतलब समन्वय नहीं करते थे। हमने गांव के स्तर पर योजना पहले से तैयार हो, गांव की ग्राम पंचायत में तय होगा कि काम क्या लिया जाए और उसका डिजिटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजित होगा। पहले सोशल ऑडिट होती नहीं थी, अब सोशल ऑडिट 6 मई में तय कर दी, ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, ये हमने तय कर दिया, और शिकायतों का त्वरित समाधान।
देश के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इससे उत्पन्न होने वाले रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरों के प्रति आगाह किया है। एम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. बिमल कुमार दास ने बताया कि कई जीवाणु अब सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी हो गए हैं, जिससे दवाएं बेअसर हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्थिति भविष्य में संक्रमण के इलाज को और कठिन बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में लोगों से एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध एक गंभीर वैश्विक समस्या बन गया है, इसीलिए बिना चिकित्सक के परामर्श के दवाओं का सेवन न करें। मरीजों से दवाओं का कोर्स पूरा करने और स्वयं दवा लेने की आदत से बचने की अपील की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के लिए विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। CBSE की परीक्षाएं इस साल 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क परामर्श इस साल 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा तनाव मुक्त तैयारी, प्रभावी समय प्रबंधन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर और तनाव दूर करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। और अब मौसम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर सहित कई क्षेत्रों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस कारण दृश्यता कम होने से जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ। इस बीच आज डूंगरपुर में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में 4.4, पाली में 4.7 और राजधानी जयपुर में 6.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा और शीत दिन की स्थिति बनी रह सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, AI से देश की सुरक्षा और प्रगति को नया आयाम मिलेगा। राजस्थान रीजनल AI कॉन्फ्रेंस में AIML पॉलिसी और नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम का शुभारंभ। विकसित भारत जी राम जी तथा 4 नई श्रम संहिताओं पर PIB की ओर से जयपुर में क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्ता का आयोजन। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने तथा पारे में और गिरावट की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।